आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशन फाउंडेशन सहित कई पर्यावरण समूह गैस निर्यात पर नया टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। कैनबरा में ग्रीन्स पार्टी के नेतृत्व में एक संसदीय जांच अगले दो दिनों तक इस मुद्दे पर विचार करेगी और इसकी रिपोर्ट 12 मई को पेश होने वाले फेडरल बजट से ठीक पहले दी जाएगी। मांग की जा रही है कि गैस निर्यात पर 25% कर लगाया जाए या फिर अप्रत्याशित मुनाफे पर पेट्रोलियम रिसोर्स रेंट टैक्स PRRT पढ़ाया जाए। ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी और पूर्व ग्रीन्स नेता एडम बैंट का कहना है कि अब समय आ गया है कि गैस कंपनियां अपना उचित टैक्स चुकाएं। उनका कहना है कि बड़ी गैस कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं, जबकि आम ऑस्ट्रेलियाई बढ़ती महंगाई के कारण ऊंची ब्याज दरों और जलवायु संकट के चलते बढ़ते बीमा प्रीमियम का सामना कर रहे हैं। वहीं फेडरल विपक्ष नेता एंगस टेलर का कहना है कि नया टैक्स लगाना एक अच्छा विचार नहीं है। वे कहते हैं कि औद्योगिक पंडितों का मानना है कि इससे उद्योग ही खत्म हो जाएगा और आगे कोई नया निवेश नहीं आएगा। इस बीच न्यू साउथ वेल्स ट्रेजरी के एक अधिकारी कथित तौर पर हजारों संवेदनशील सरकारी फाइलें डाउनलोड करने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। 45 वर्षीय इस व्यक्ति पर 5,600 से अधिक सरकारी दस्तावेज डाउनलोड करने का आरोप है। न्यू साउथ वेल्स के ट्रेजरर डैनियल मुखी ने कहा कि संबंधित जानकारी बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि इसमें गोपनीय व्यावसायिक जानकारी के साथ साथ वर्तमान और पूर्व सरकारी बातचीत और समझौतों से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 5 हफ्तों से भी कम समय में दूसरी अबोरिजिनल महिला की जेल के अंदर मृत्यु के बाद ग्रीन्स पार्टी ने एक महिला जेल की समीक्षा की मांग की है। 40 वर्षीय एक अबोरिजिनल महिला की शनिवार सुबह पर्थ के उत्तर पूर्व में स्थित बैंड्यूप महिला जेल में मृत्यु हो गई थी। ये घटना उसी जेल में एक 35 वर्षीय महिला की मृत्यु के ठीक एक महीने बाद हुई है। WA ग्रीन्स के नेता ब्रैड पेटिट का कहना है कि राज्य सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या गलत हो रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार 1991 की अबोरिजिनल डेथ्स इन कस्टडी पर बनी रॉयल कमीशन की सभी लंबित सिफारिशों को पूरी तरह अब लागू कर दे। वहीं गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के प्रमुख दूत का कहना है कि वे हमास और अन्य मिलिटेंट समूहों के निरस्त्रीकरण पर किसी योजना पर सहमति बनने को लेकर काफी आशावादी हैं, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। निकोलाय म्लादिनोव ने कहा है कि एक कार्यान्वयन योजना पर काम जारी है जिसमें निरस्त्रीकरण, गाजा में नई शासन व्यवस्था और इसराइल की वापसी से जुड़े प्रावधान शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में हमास के साथ गंभीर बातचीत हुई है। ये आसान नहीं है और सभी पक्षों को महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे, लेकिन वे इस प्रक्रिया को लेकर आशावादी हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एक बड़े नीतिगत बदलाव में जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगी अपनी लंबे समय से चली आ रही पाबंदी हटा ली है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उसके शांतिवादी संविधान के तहत जापान की रक्षा नीति पर कड़े प्रतिबंध रहे हैं, लेकिन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल में अब इनमें से कई सीमाएं हटाई जा रही हैं। अब मिसाइल, लड़ाकू विमान और युद्धपोत जैसे रक्षा उपकरणों के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरु किहारा ने कहा है कि सरकार हर मामले के आधार पर तय करेगी कि क्या बेचना है और किसे बेचना है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने पहले जापान द्वारा पारंपरिक रक्षा प्रतिबंधों में दी गई ढील का स्वागत किया है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना पति की कानूनी जिम्मेदारी है, जिससे आर्थिक कमजोरी का हवाला देकर बचा नहीं जा सकता। ये टिप्पणी उस मामले में आई जिसमें पति ने फैमिली कोर्ट के 4,000 रुपये मासिक मेंटेनेंस के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि फैमिली फैमिली कोर्ट ने सभी तथ्यों पर सही तरह से विचार किया था। पत्नी ने बताया कि वह कम पढ़ी लिखी है, बच्चों की परवरिश अकेले कर रही है और उसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है। अदालत ने दोहराया कि वैवाहिक जिम्मेदारियों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ 21 अप्रैल 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।